भूतले स्वयंरूपकदामयहं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताविने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। लास्ट वीक हमने चैप्टर चैप्टर सिक्स टेक्स्ट आई थिंक 24 तक किया था।
कृष्ण 24 करना था
24 करना था ओके। जस्ट अ मिनट मैं उस चैप्टर को खोल लूँ उसके बाद स्टार्ट। सनिश्चयेन युक्तव्यो यहाँ से स्टार्ट करूँ ओके। हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक कि हाँ योगा रूढ़ व्यक्ति के लक्षणों को डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि ये चैप्टर चालू हो गया हुआ था दो प्रकार के लोगों के बारे में डिस्कस करते हुए योगा रूढ़ और योगा रुक्ष। तो पहले भगवान ने योग की प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने में मन सबसे ज्यादा ऑब्स्टेकल प्रेजेंट करता है तो उसको भगवान ने बताया था। उसको डिस्क्राइब करने के बाद फिर भगवान ने योगारूढ़ स्थिति में जो लोग हैं उनके लक्षण बताए थे और उसके बाद आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे साधना भक्त जो कि योग में लगना चाहते हैं उनको किस प्रकार से योग करना चाहिए कि योग में सफल हो। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट भी है और फेमस भी है। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। साधना जो साधना कर रहे हैं साधना एस्पायरेंट के लिए योग करते समय क्या क्या चीजों की आवश्यकता है इसमें लिखा है स निश्चयेन योक्तव्यो। सबसे पहली बात व्यक्ति को योग करते समय निश्चय दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अगर उसको दृढ़ विश्वास नहीं है तो योग में सफल नहीं होगा। निश्चयेन युक्तव्यो योग में युक्त तब होना चाहिए जब उसको दृढ़ विश्वास हो। विश्वास के साथ होना चाहिए कि हम योग में सफल होंगे। और दूसरा मीनिंग है योगो अनिर्विण्ण चेतसा। अनिर्विण्ण चेतसा मतलब उसकी चेतना को और कहीं डिविएट नहीं होना चाहिए। इसको बोला जाता है अनिर्विण्ण चेतसा बिना विचलित हुए। तो पहला निश्चय के साथ। निश्चय का मतलब होता है कि व्यक्ति को पता होना चाहिए कि मैं इस रास्ते को कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कितने भी संकट आए। उसको बोला जाता है निश्चय न। और अनिर्विण्ण चेतसा मतलब अपने चेतना को योग में पूरी तरह से फिक्स करना और कहीं डिविएट नहीं होने देना। तो निश्चय के साथ बिना डिविएशन के संकल्प भगवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् अशेषतः। इंद्रियों के इच्छाओं को या संसार में काम इच्छा को भोग की इच्छाओं को दबाना बहुत कठिन है इसलिए मन से जो भी काम की इच्छाएं आती हैं उनको संकल्प के द्वारा त्याग करना। सर्वान् अशेषतः पूरी तरह से काम उन्मुख जो इच्छाएं हैं उनको त्याग करना। मन सैवेंद्रिय ग्राम और मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों के समूह को नियंत्रण में रखना। इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति करता है तो योग में सफल हो सकता है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्य पूर्वक अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे यह सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ अभ्यासी की सफलता सुनिश्चित है। जो हमने डिस्कस किया कि अगर हो सकता है मार्ग में कठिनाई आए, क्योंकि भक्ति योग का रास्ता बहुत लंबा है, कई बार लंबे रास्ते पे हम जाते हैं, तो हम जिसके पास धैर्य नहीं है वो ज्यादा ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। शुरू में लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है, बहुत उत्साह भी होता है, परंतु वो उत्साह लंबा नहीं चल पाता है, धैर्य नहीं होता, इसलिए उत्साह कुछ दिन में खत्म हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले चाहिए कि समय लगे परंतु धैर्य के पूर्वक वो उस रास्ते पे चलता रहे। और श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत में इसको बताया है, उत्साह निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षट्भिः भक्ति प्रसिद्धिति। कौन सा व्यक्ति भक्ति में सफल हो सकता है? अगर वो उत्साह के साथ, निश्चय के साथ और धैर्य के साथ कार्य करता है। तीन तीन की आवश्यकता है उसको। उत्साह होना चाहिए, उत्साह के कारण वो कार्य करना चालू करेगा, साथ साथ निश्चय डिटरमाइंड होना चाहिए कि वो भटकेगा नहीं, और धैर्यात ये पता होना चाहिए कि सफलता तुरंत नहीं मिलती है और जितना भी समय लगे धैर्य के साथ उसका पालन करें। संग त्यागात, नॉर्मली योगाभ्यास में या किसी भी चीजों में जो व्यक्ति लगा रहता है तो उसका एक डिविएशन होता है, भौतिक चीजों से आसक्त हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति पुणे से मुंबई जा रहा है, तो मुंबई जाते जाते जब वो रास्ते में देखता है कि खंडाला की पहाड़ियां आती हैं, तो मुंबई जाने का समय, मुंबई जाने का विचार छोड़ के खंडाला में ही 2-3 दिन रुक जाता है। तो खंडाला उसके लिए, खंडाला लोनावाला जो है वो उसके लिए डिविएशन है और मुंबई पहुंचना उसके लिए उसका डेस्टिनेशन है। तो अगर व्यक्ति रास्ते में चलते हुए रास्ते की चीजों से आकर्षित हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, तो फिर वो आगे उसके डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए संग का त्याग होना बहुत आवश्यक है। जो भी अटैचमेंट है उसको त्याग करके सतो वृत्ति है, साधुओं के पथ का अनुगमन करना। अगर कोई ये 6 कार्य करता है तो भक्ति में सफल होता है। कौन कौन से 6 कार्य? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तत्तत् कर्म मतलब भक्ति के कर्मों को लगातार करते रहना, और संग त्यागात अटैचमेंट को त्याग देना, सतो वृत्ति साधुओं को पालन करना, साधुओं के रास्ते को पालन करना। इसके बाद संकल्प की स्टोरी पर उपाजी बताते हैं, एक गौरैया की स्टोरी। मनुष्य का चाहिए कि उस गौरैया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरैया ने समुद्र तट पर अंडे दिए, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले गया। इस पर गौरैया अत्यंत क्षुब्ध हुई और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए कहा, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से पानी उलीचने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी, तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने यह बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और गौरैया से मिलने आए। गरुड़ उस नन्ही गौरैया के निश्चय से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि वह उसके अंडे लौटा दे, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र भयभीत हुआ, उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरैया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई। इसी प्रकार योग, विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ नियमों का पालन करता है भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं। क्योंकि जो अपनी सहायता करते हैं, अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उनकी सहायता करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ये स्टोरी बहुत फेमस स्टोरी है, कई जगह पे आता है स्टोरी। इस स्टोरी का ये मॉरल है कि हो सकता है उस गौरैया के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो समुद्र का मुकाबला कर सके, परंतु उसका जो संकल्प था उसको देख के गरुड़ को उसके ऊपर दया आ गई, और उस संकल्प के कारण गरुड़ ने उसकी मदद करना चाहा। और जब गरुड़ ने उसकी मदद करना प्रारंभ किया तो फिर समुद्र को भी समर्पण होना पड़ा, समुद्र को भी सरेंडर होना पड़ा, क्योंकि गरुड़ की शक्ति के सामने समुद्र की शक्ति कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से हो सकता है हम भगवत भक्ति में लगे या योग की प्रोसेस में लगे और बहुत कठिनाई हो, क्योंकि मन को हम नहीं रोक सकते हैं, परंतु अगर हम संकल्प के साथ लगते हैं तो भगवान कृपा करते हैं, और जब भगवान हमारे साथ खड़े रहते हैं तो फिर हम मन को आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए इस स्टोरी को भक्ति से कनेक्ट किया जाता है कि माया शक्ति के सामने हमारी कोई शक्ति नहीं है, हम कभी भी नहीं जीत सकते हैं, परंतु भगवान अगर हमें कृपा करते हैं तो हम माया शक्ति से विजयी हो सकते हैं। इसके बाद वो बताते हैं कैसे कैसे धीरे धीरे मन को नियंत्रित करना चाहिए। शनै शनैर उपरमेत बुद्धया धृतिग्रहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्। शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे करके, बुद्धया धृतिग्रहीतया, बुद्धि और विश्वास के द्वारा धीरे धीरे इंद्रिय भोग से निवृत्त होना चाहिए, और आत्मसंस्थं मनः कृत्वा, अपने मन को स्वयं में स्थित करके, न किंचिदपि चिंतयेत, बाकी कुछ नहीं सोचना चाहिए, भौतिक संसार की वस्तुएं नहीं सोचना चाहिए। हाँ, ये सोच सुनना बहुत कठिन लग रहा है कि कैसे मन को ऐसा ट्रेंड करें कि वो और कुछ नहीं सोचे, पर ये बहुत आसान है। जब हम भक्ति का पालन करना चालू करते हैं तो मन भक्ति की शक्ति के कारण, नाम की शक्ति के कारण, भगवान की सेवा की शक्ति के कारण मन शुद्ध हो जाता है, अपने आप ही वो इन चीजों को छोड़ देता है। जैसे किसी को ऊंचा अच्छा भोजन देने के कारण वो जो सामान्य सूखा भोजन है उसको छोड़ देता है, उसी प्रकार से भक्ति में मन लगने के बाद मन इतना ज्यादा शुद्ध हो जाता है कि इस संसार के जो आक्षेप हैं उसके लिए वो ड्राई लगते हैं, उसको कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है उन चीजों में। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए, और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। इस प्रोसेस को प्रत्याहार बोला जाता है। सभी इंद्रिय कर्म को प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे बंद करना चाहिए, इसको प्रत्याहार कहा जाता है। समुचित विश्वास तथा बुद्धि के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे सारे इंद्रिय कर्म करने बंद कर देना चाहिए, यह प्रत्याहार कहलाता है। मन को विश्वास, ध्यान तथा इंद्रिय निवृत्ति द्वारा वश में करते हुए समाधि में स्थिर करना चाहिए। उस समय देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की कोई संभावना नहीं रह जाती। इसका मतलब है, कई बार हिंदी जो लिखी रहती है वो कठिन लगती है। देहात्म बुद्धि में अनुरक्त होने की संभावना मतलब उनका चेतना अपने शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता है। योग करते करते जब मन शुद्ध हो जाता है तो मन हमेशा भगवान के बारे में सोच सकता है, तो उस समय व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता है। सामान्यतः हमारा पूरा दिन इसमें निकलता है, हम स्वयं के बारे में सोचते रहते हैं, परंतु योग की ऊंची अवस्थाओं में भगवत चिंतन के कारण ये देहात्म बुद्धि खत्म हो जाती है। जब तक इस शरीर का अस्तित्व है तब तक मनुष्य पदार्थ में लगा रहता है, किंतु उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय में नहीं सोचना चाहिए। उसे परमात्मा के आनंद के अतिरिक्त किसी अन्य आनंद का चिंतन नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से यह अवस्था सहज ही प्राप्त की जा सकती है। कैसे की जा सकती है वो भगवान बता रहे हैं। मन को नियंत्रण में जैसे जैसे मन कहीं भागता है तो उसको वापस में लाना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलम् स्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चलति, जहां जहां भी मन जो है विचलित होता है, मनश्चञ्चलम् स्थिरम्, चूंकि मन चंचल है और अस्थिर है, इसलिए जहां जहां भी मन विचलित होता है, ततस्ततो नियम्यैतत्, वहां वहां से मन को नियम मतलब वश में करके आत्मन्येव वशं नयेत्, अपने वश में वापस लाना चाहिए। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वहां से खींचे, अपने वश में लाए। इसमें भगवान अर्जुन को टेक्निक बता रहे हैं कि ये तो एक ऑब्वियस चीज है कि मन जो है विचलित होगा, मन अलग अलग जगह पे जाएगा। मनुष्य केवल इतना कर सकता है कि जैसे ही उसको एहसास हो कि मन भटक गया है, फिर से मन को वापस लेके आए। किसी भी मेडिटेशन प्रोसेस में ऐसा होता है, भगवान के नाम के जप में भी हमने देखा है, जब हम भगवान का नाम जप चालू करते हैं तो कई बार माला करते करते हमें पता ही नहीं चलता हमारा मन कहाँ भाग गया है। जब माला खत्म होती है, श्री कृष्ण चैतन्य मंत्र करना चालू करते हैं, तब याद आता है कि एक माला खत्म हो गई। तो हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली चीट करता है, क्योंकि मन जो है जब तक नियंत्रित नहीं है तो वो कभी भी नियंत्रित होना नहीं चाहता है। जैसे छोटे बच्चे को नहलाना बहुत कठिन है, जब छोटे बच्चे को नहलाते हैं तो आप देखेंगे उसके दोनों पैर पकड़ना पड़ता है, दोनों हाथ पकड़ना पड़ता है, और इस तरह से पकड़ के उसके ऊपर पानी डाल के साफ करना पड़ता है, वो साफ होना नहीं चाहता। छोटे बच्चों को नहलाते हुए आपने देखा होगा, या आपने बचपन बचपन का ध्यान होगा, छोटे बच्चे को नहलाना माता पिता को कितना कठिन होता है। तो इसी प्रकार से मन जो अनियंत्रित है उसको योग में लगाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि लगातार भाग जाता है वो, कभी वो योग में लगना नहीं चाहता। तो शुरू की अवस्थाओं में जब भी हमें पता चलता है कि वो भाग गया है, भगवान का नाम नहीं सुन रहा है, हमें उसको वापस खींच के लाना चाहिए और अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है। उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी वश में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जो मन के वशीभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावनामृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि यह योगाभ्यास की परम सिद्धि है। जो मन को नियंत्रित करते हैं वो गोस्वामी कहलाते हैं, और जो मन के द्वारा नियंत्रित होते हैं वो गोदास कहलाते हैं। और गोस्वामी जो है वो इंद्रिय सुख, वो इस भौतिक इंद्रिय सुख से आकर्षित नहीं होते। गोस्वामियों का जो होता है आकर्षण, वो दिव्य आकर्षण होता है, आध्यात्मिक आकर्षण होता है, वो इस भौतिक आकर्षण से आकर्षित नहीं होते हैं। और जो गोदास होते हैं वो इस भौतिक वस्तु से आकर्षित होते हैं। तो ये दोनों में अंतर होता है, गोस्वामी और गोदास में अंतर होता है कि गोस्वामी दिव्य सुख से आकर्षित होते हैं, भगवत चेतना से आकर्षित होते हैं, गोदास इंद्रिय सुख से आकर्षित होते हैं। प्रशांत मन संहेनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैते शांत रजसम ब्रह्म भूतम अकल्मषम। प्रशांत मन संहेनम, प्रशांत मतलब पूरी तरह से शांत मन, भगवत चरणों में जो मन स्थित होता है वो शांत कहलाता है। प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तम। जब कोई योगी अपने मन को भगवान कृष्ण के चरणों में रख देता है तो उसका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, प्रशांत हो जाता है, और तब वो उपैति शांत रजसम, उसके बाद उसकी रजोगुण मतलब काम इच्छा शांत हो चुकी होती है। रजोगुण का लक्षण होता है काम, और काम का लक्षण होता है बहुत ज्यादा आसक्ति। तो जब हम अपने मन को भगवान के चरणों में स्थित कर देते हैं तो हम रजोगुण से शांति प्राप्त करते हैं, काम भावना भोग की इच्छा जो है वो खत्म हो जाती है, और उस समय अकल्मषम जितने भी पाप कर्म हैं वो सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, और व्यक्ति ब्रह्म भूत अपने आप को आत्मा की स्थिति में पहुंच जाता है और परमात्मा को पहचान लेता है। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर होता है वह निश्चय ही दिव्य गुण की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है, और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। ब्रह्म भूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम। जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवई मनः कृष्ण पदाय विन्दयो। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक एयरपोर्ट से कोई हवाई जहाज छोड़ा, कोई हवाई जहाज जाता है, तो जब तक वो हवाई जहाज या हवाई जहाज से अच्छा स्पेस स्पेस शिप अगर हम कहीं छोड़ते हैं, तो अगर वो स्पेस शिप अंतरिक्ष में जाके किसी दूसरी जगह पे लैंड करता है तो ठीक बात है, अगर वहां पे कहीं लैंड नहीं करता है तो उसको फिर से वापस धरती पे आके धरती पे लैंड करना होगा। तो वो इसमें बताया जा रहा है कि हम अपने मन को इंद्रिय भोग से निकालते हैं, परंतु अगर मन को इंद्रिय भोग से निकालने के बाद भगवत चरणों में स्थित नहीं करेंगे तो हम ज्यादा देर तक ब्रह्म की अवस्था में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में रहना अपने आप में इसी तरह से जैसे हवा में रहना। तो जैसे स्पेसशिप को जब तक कोई लैंड नहीं मिलेगा, कोई दूसरा स्थान नहीं मिलेगा लैंड करने के लिए, तब तक उसको धरती पर वापस आना पड़ेगा, इसी तरह से जब तक हमारा मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं होगा तब तक हमें बार बार भौतिक भोग में वापस आना पड़ेगा, तब तक हम ब्रह्म में स्थित नहीं हो सकते हैं। इसलिए ब्रह्म मुक्ति जो कहलाती है, ब्रह्म निर्वाण या ब्रह्म रूप, ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करना, वो परमानेंट नहीं कहलाती है, क्योंकि हमने तब भी भगवान के चरण कमलों में अपना अपने आप को स्थिर नहीं किया है। तो केवल टाइम का फर्क है, व्यक्ति फिर से नीचे आ जाएगा, उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए जब दिव्य प्रेम भक्ति जो है वो केवल परमानेंट है, बाकी परमानेंट नहीं है, परमानेंट मुक्ति को प्रदान नहीं कर पाते हैं। और कोई व्यक्ति दिव्य प्रेम भक्ति में रहता है तो रजोगुण भौतिक कलमश से भी मुक्त हो जाता है। युञ्जन् एवं सदात्मानम्। ओके, 1 मिनट। या जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भगवान डिस्क्राइब करते हैं। इसको कुछ श्लोकों बाद अर्जुन के प्रश्न चालू होंगे, ऑलमोस्ट 30-32 या 33 श्लोक तक भगवान अष्टांग योगी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। मन को नियंत्रित करने के बाद व्यक्ति क्या क्या प्राप्त कर सकता है वो डिस्क्राइब करते हैं। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मन को नियंत्रित करना पॉसिबल नहीं है, तो वो थीम 4-5 श्लोक बाद चालू होने वाला है। युञ्जन् एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखम् अश्नुते। इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है, उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। और छोटा तात्पर्य है, इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, पर योग में अगर जो व्यक्ति लगा रहता है वो भौतिक कलमश से मुक्त होकर प्रेम भक्ति में सुख प्राप्त करता है और वो सभी के अंदर भगवान को देख पाता है। ऐसा भक्त जो भक्ति में सफल हो जाता है सबके अंदर भगवान को, भगवान के परमात्मा रूप को देखता है और सभी को आत्मा का दर्शन करता है, तब वो किसी व्यक्ति के शरीर से आकर्षित नहीं होता है, क्योंकि वो उसके हृदय में स्थित परमात्मा और आत्मा को दर्शन कर सकता है। वो इस श्लोक में बताया है, सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। ऐसा व्यक्ति सर्वत्र समदर्शन है, हर जगह वो समान दर्शन कर पाता है। समान दर्शन का मतलब समभाव से सब जगह देख सकता है। जब कोई व्यक्ति आत्मा का दर्शन करता है चारों तरफ, हमें ध्यान होगा पहले स्कंद में जब हमने पढ़ा था कुछ महीने पहले, एक बार जब हमने नारद व्यास का संवाद डिस्कशन किया था 6-7 महीने पहले, तो वहां पे एक इंसिडेंट आता था कि सुखदेव गोस्वामी जाते हैं, वहां पे कुछ स्त्रियां स्नान करती रहती हैं और वो स्त्रियां सुखदेव गोस्वामी को देख के उनको कुछ कुछ अंदाजा नहीं होता, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के हृदय में कोई काम भावना रहती नहीं है। वो स्त्रियों को नग्न अवस्था में भी देखते हैं परंतु केवल उनको, उनके अंदर आत्मा को देखते हैं, उनके सारे शारीरिक ड्रेस को देखते ही नहीं। जिस प्रकार से व्यक्ति कपड़ों को नहीं देखता है, व्यक्ति को देखता है, उस प्रकार से जो व्यक्ति योग युक्त है, कृष्ण चेतना में स्थित है, वो सभी भूत जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा को देखता है और भगवान के अंदर सभी जीवों को देख सकता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निस्संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह परब्रह्म कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा रूप में देख सकता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ये श्लोक 18वें अध्याय के लास्ट लास्ट में आता है, जहाँ पे भगवद गीता की चरम शिक्षाएं दी गई हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो ज्ञानी व्यक्ति है वो गाय, कुत्ते, हाथी, ब्राह्मण, चांडाल सबके अंदर परमात्मा को दर्शन कर सकता है, परमात्मा आत्मा का दर्शन कर सकता है। अपने परमात्मा रूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते या ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते। यही भगवान की परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। जो वास्तविक रूप से योगाभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को आस्तिक तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, आतत्वाच मातृत्वाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्तोत्र होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता भी संभाव रखता है। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति आत्मा को भी देख सकता है, आत्मा के साथ साथ परमात्मा को भी देख सकता है। जैसे हम अगर किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो ये नमस्कार उस परमात्मा के लिए होता है जो हर व्यक्ति के हृदय में है। इसलिए व्यक्ति को स्वयं उस नमस्कार को स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नमस्कार जो इंटेंड किया जाता है परमात्मा के लिए इंटेंड किया जाता है। कई बार हम आकर्षित हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं कि लोग मुझे सम्मान करें, मुझे देख के नमस्कार करें या प्रणाम करें। ये सब शारीरिक चेतना का लक्षण है, क्योंकि वास्तविकता में प्रणाम और नमस्कार उस शरीर को नहीं, उस शरीर के अंदर परमात्मा जो स्थित है उसको किया जाता है। और हम भी जब किसी को प्रणाम करते हैं तो परमात्मा को प्रणाम करते हैं। एक्सटर्नली हर जीव भगवान की शक्ति में है। 7वें अध्याय में बताते हैं कि भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, भूमि, रापो, नलो, वायु। ये एक भौतिक शक्ति है, इसके ऊपर एक शक्ति है पराशक्ति। जीव पराशक्ति का अंश होते हुए भी अपराशक्ति से बद्ध है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में ही स्थित रहता है। योगी समदर्शी है, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हैं। अपराशक्ति में जीव भौतिक इंद्रियों का दास रहता है, जबकि पराशक्ति में वह परमेश्वर का दास रहता है। अपराशक्ति मतलब भौतिक संसार में, पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक जीवन में। तो अपराशक्ति में व्यक्ति इंद्रियों का दास होता है, उसको बोला जाता है इंद्रिय राम। 3रे अध्याय में हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, अघायो इंद्रिय राम मोघ पार्थ सजीवति। जो भौतिक संसार में होता है वो व्यक्ति भौतिक इंद्रियों का दास होता है, और पराशक्ति में वो भगवान का दास होता है। परंतु हर अवस्था में भगवान का दास होता है, क्योंकि भौतिक शक्ति भी भगवान की शक्ति है। तो या तो व्यक्ति डायरेक्टली भगवान को समर्पण करे, सरेंडर करे, या फिर इनडायरेक्टली उसको समर्पण करना पड़ेगा। भगवान का दास तो उसको बनना ही पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में ये दृष्टि पूर्ण पाई जाती है। जो व्यक्ति ऐसी अवस्था में है कि भगवान का हर जगह दर्शन कर सकता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं कि वो हमेशा मुझे देख सकता है, वो मैं उसके लिए कभी लॉस्ट नहीं हूं, वो भी मेरे लिए कभी लॉस्ट नहीं है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। बहुत आसान संस्कृत है इसमें। यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है, सर्वम च मयि पश्यति, प्रत्येक वस्तु को मुझ में देखता है, तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं कभी भी अदृश्य नहीं होऊंगा, सच में न प्रणश्यति, वो कभी भी मेरे लिए अदृश्य नहीं होगा। जो सब मुझे सब जगह देखता है और सब सब कुछ मुझ में देखता है, वो व्यक्ति कभी भी मुझसे दूर नहीं होता और मैं भी कभी उससे दूर नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है। ऐसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत हो, किंतु वह प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की ही शक्ति की अभिव्यक्ति है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है, ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावनामृत की इस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाते हैं। आध्यात्मिक एक रूपता जो भक्त भगवान के बीच में होती है, उसका ये मतलब नहीं है कि भक्त कृष्ण ही बन जाता है। कुछ कुछ लोगों को ये डाउट होता है कि जब कोई व्यक्ति साधना करता है तब वो भगवान से अलग होता है, जब वो साधना करके सिद्धि को प्राप्त होता है तो फिर वो भगवान बन जाता है, और उसको आध्यात्मिक एक रूपता बोलते हैं, स्पिरिचुअल सिम्युलेशन इस तरह से। परंतु ये गलत विचार है, ये एक मिसकंसेप्शन है। भक्ति की किसी भी अवस्था में भक्त भगवान नहीं बनता है, भगवान कृष्ण से एक अर्थ में एक रूप होता है कि कृष्ण उसके लिए सब कुछ बन जाते हैं और वो कृष्ण के प्रेम से पूरी तरह से भर जाता है, कृष्ण प्रेम से पूरित हो जाता है, और भक्त और भगवान के बीच में फिर संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे स्वामी और सेवक का संबंध है, तो दोनों सेवक को अगर स्वामी की सेवा करनी है तो उसको स्वामी के स्तर तक जाना होगा। जैसे अगर हमें प्राइम मिनिस्टर की सेवा करनी है तो प्राइम मिनिस्टर जहां रहता है वहां पर जाके रहना पड़ेगा। इसी तरह से उस सेंस में बोला जाता है कि अगर भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान ही उसके लिए सब कुछ हो जाते हैं और भक्त उनकी चेतना से पूरी तरह से भर जाता है और भगवान और भक्त के बीच का संबंध स्थापित हो जाता है। और उस अवस्था में जीव को विनाश भी नहीं किया जा सकता और भगवान उसकी दृष्टि से ओझल भी नहीं होते हैं। और प्रभुपाद जी ने ब्रह्मा जी का ये श्लोक कोट किया है, प्रेमान जन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेम अंजन छुरित भक्ति विलोचने न, अपने नेत्रों से, भक्ति से भरे हुए नेत्रों से, नेत्रों में प्रेम का अंजन लगाते हैं। अंजन का मतलब होता है काजल। बचपन में माँ अपने बच्चे को काजल लगाती है जिससे कि उसकी जो दृष्टि है एकदम स्वच्छ हो जाए। आंखों के नीचे जो काजल लगाया जाता है उसका मतलब होता है कि हमारी आंखों की दृष्टि को एकदम निर्मल कर देता है। तो हमें कौन सा अंजन लगाना चाहिए? प्रेम का अंजन। प्रेम का अंजन जब आंखों में लगाते हैं, और भक्ति विलोचने ना, उसके लगाने से आंखों में भक्ति रूपी रस प्राप्त होता है और उस भक्ति भाव से भरी हुई आंखों के द्वारा हम भगवान के श्याम सुंदर रूप को हमेशा अपने हृदय में दर्शन कर सकते हैं। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं, वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं, न भक्त उनकी दृष्टि से ओझल होता है, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा उपस्थित होते हैं। और भगवान अगले श्लोक बता रहे हैं कि वो व्यक्ति एकत्वम स्थित होता है, सर्वभूत स्थितम यो माम भजत्वेकत्वम आस्थित सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। ऐसा व्यक्ति मेरा योगी बनता है जो सर्वभूत स्थितम यो माम, सभी जीवों के हृदय में मैं स्थित हूँ और भजत्व एकत्वम आस्थितम, सभी जीवों के हृदय में स्थित मैं मुझे भजन करता है, मेरा भजन करता है। इस तरह से वो मुझसे एकत्व में स्थित होता है क्योंकि वो ये देख सकता है कि हर जीव के हृदय में मैं ही स्थित हूँ, जीव एक दूसरे से अलग नहीं है, मैं ही उनके हृदय में स्थित हूँ। तो ऐसा व्यक्ति मुझसे एकत्व भावना में स्थित हो जाता है। ईशोपनिषद में भी इस प्रकार से एक सेक्शन आता है, कौन सा था, एकत्वम अनुपस्थित, एक कोटेशन आता है ईशोपनिषद में, उसका भी ये मीनिंग है। श्रील व्यासदेव उसमें लिखते हैं कि भक्त और भगवान एकत्व में स्थित होते हैं, दोनों एक हो जाते हैं। वही मीनिंग जो हमने डिस्कस किया कि दोनों एक हो जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि दोनों एक में मिल जाते हैं, दोनों का जो स्वभाव है सेम हो जाता है, दोनों पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाते हैं, भगवान भी आध्यात्मिक है और भक्त भी आध्यात्मिक हो जाता है, इस तरह से वो एकत्व में स्थित होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। चल रहा है कि परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। जो लोग बोलते हैं, जैसे कुछ लोग बोलते हैं, रामपाल जी के फॉलोअर्स बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि परमात्मा की शरण में जाओ, मतलब परमात्मा जो है वो भगवान से अलग है। 18वें श्लोक में भगवान बताते हैं ना कि तम शरणम गच्छ, उसकी शरण लो। तो उसका वहां पे लोग बोलते हैं कि भगवान क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि परमात्मा की शरण लो, शायद परमात्मा भगवान से अलग है। परंतु इस श्लोक में हम देख सकते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, कोई अंतर नहीं है, भगवान और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। जो योगी परमात्मा का ध्यान करता है, वह अपने अंतःकरण में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कृष्ण के पूर्ण रूप में शंख चक्र गदा तथा कमल पुष्प धारण किए करता है। योगी को यह जानना चाहिए कि विष्णु कृष्ण से भिन्न नहीं है, परमात्मा रूप में कृष्ण जन जन के हृदय में स्थित है। यही नहीं, असंख्य जीवों के हृदयों में स्थित असंख्य परमात्माओं में कोई अंतर नहीं है। ना ही कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर व्यस्त व्यक्ति तथा परमात्मा के ध्यान में निरत एक पूर्ण योगी के बीच कोई अंतर है। तो इसमें क्लियरली बताया है कि सभी के हृदय में जो परमात्मा है वो स्वयं भगवान कृष्ण है, और इनके बीच में कोई अंतर नहीं। ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में जो परमात्मा है और आपके हृदय में जो परमात्मा है वो अलग अलग है, दोनों समान है। और भगवान की सेवा भक्ति में जो लगे रहते हैं व्यक्ति और जो परमात्मा के ध्यान में योगी लगा रहता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का गोल एक ही है, कृष्ण और परमात्मा दोनों समान है। श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, निखिलास्वपि अवस्थासु जीवन मुक्त च उच्यते। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगातार लगा रहता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, स्वतः मुक्ति को प्राप्त करता है। दिक् कालाद्यनवच्छिन्ने कृष्णे चेतो विधाय च तन्मयो भवति क्षिप्रम जीवो ब्रह्मणि योजयेत। देश काल से अतीत तथा सर्वव्यापी श्री कृष्ण के दिव्य रूप में ध्यान एकाग्र करने से मनुष्य कृष्ण के चिंतन में तन्मय हो जाता है और तब उनके दिव्य सानिध्य की सुखी अवस्था को प्राप्त होता है। इसके बाद अगला श्लोक भी आया है, एकोपि सन बहुधा यो भवाति। या भगवान यद्यपि एक ही हैं परंतु बहुत सारे हृदयों में अपने आप को व्याप्त करते हैं। और एक और श्लोक में से कोटेशन दिया है, एक एव परो विष्णु सर्वव्यापी न संशय ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवत बहुधेयते। इसमें उदाहरण दिया है कि विष्णु तो एक ही है परंतु सर्वव्यापी न संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो हर जगह स्थित है। हालांकि वो एक ही हैं परंतु हर जगह स्थित हैं। उसी तरह से जैसे सूर्य एक एक ही है परंतु अलग अलग स्थानों से सूर्य को देखा जा सकता है, जैसे सूर्य को अलग अलग स्थानों से देखा जा सकता है, उसी प्रकार से भगवान विष्णु एक हैं परंतु वो हर जगह स्थित होते हैं। और उसी थीम को भगवान बता रहे हैं, आत्मोपम्येन सर्वत्र समुपस्यन्ति योजुन सुखम वा यदि वा दुखम सयोगी परमो मतः। जो इस प्रकार से परमात्मा को सब जगह देख सकता है, उसको सुख दुख और इन सब वस्तुओं में वो समान बन जाता है। वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। क्योंकि वो जब आत्मा परमात्मा के इस ज्ञान को जान लेता है तो फिर वो संसार के जो टेम्पररी चीजें हैं उनसे मुक्त हो जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी कहलाता है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना है। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर। अगर कोई व्यक्ति इसको समझता है कि भगवान कृष्ण परम भोक्ता है, सभी के स्वामी है, सभी के परम हितैषी है, अगर कोई ये जान जाता है तो वो सुख को प्राप्त करता है। और दुख को कब प्राप्त करता है? जब वो भगवान के साथ अपने इस संबंध को भूल जाता है। भगवान के साथ अगर कोई संबंध भूल जाता है तो उसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बहुत धनी परिवार का बेटा है परंतु अपने माता पिता से बिछुड़ गया और भूल गया कि उसके माता पिता कौन है। उस अगर कोई इस तरह से करता है तो वो जिंदगी भर दुख भोगता रहता है, क्योंकि वो अपने संबंध को भूल चुका है, अपने माता पिता के संबंध को भूल चुका है। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण तीन प्रकार के तापों को भोगता है, और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। जब हम देखते हैं कि किसी कोई व्यक्ति का वास्तविक दुख इसी कारण से है क्योंकि वो कृष्ण को भूल चुका है, तो नेचुरली भक्तों के मन में इच्छा होती है कि वो इस कृष्ण ज्ञान को सभी जगह बांटना चाहते हैं। चूंकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रियकृतमः। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है, और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता। यही है वह अंतर जो एक भगवत भक्त तथा आत्म उन्नति में ही रुचि वाले योगी में होता है। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह उतना पूर्ण नहीं है, नहीं होता, जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। यहां तक भगवान ने डिस्क्राइब किया, वहां से चालू होके कि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है, और मन जहां से विचलित हो उसको वापस लाओ, वहां से भगवान ने बोलना चालू किया था और बताया था कि मन को नियंत्रण में करने के बाद व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त होता है। तो उसके बाद से ही अर्जुन लगातार सुन रहे थे, परंतु अर्जुन को ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि मन को नियंत्रित कैसे करें। तो भगवान ने जब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा किया, उसके तुरंत बाद अर्जुन ने ये प्रश्न किया कि आप मुझे जो ये योग बता रहे हैं, ये मुझे तो नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। अर्जुन उवाच योयम् योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्कृतं स्थिराम्। अर्जुन बताते हैं, यो अयम योगस्त्वया प्रोक्ता, आपके द्वारा अभी अभी जो ये योग बताया गया, साम्येन मधुसूदन, हे मधुसूदन, मुझे ऐसा लगता है, एतस्याहं न पश्यामि, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन चंचल है और एक जगह पे स्थिर नहीं है। हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। इस अध्याय के शुरू से ही भगवान बता रहे हैं कि मन को नियंत्रण में करना होगा, मन जब नियंत्रित होगा तब इन वस्तुओं को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो अर्जुन ने उसी पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, वो मेरे लिए तो इम्प्रैक्टिकल लगता है और इनटॉलरेबल, ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा मन चंचल है और अस्थिर है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए सुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहा है। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है? जो जीवन शैली, आसन विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यवस्थाओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था, उसमें अनेक सद्गुण थे, वह महान योद्धा था, दीर्घायु था, और सबसे बड़ी बात है कि भगवान कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थीं, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5,000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना? जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु सचमुच में अपना समय गवा रहे हैं। वे अपने अभीष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। तो अर्जुन 5,000 साल पहले इतने एडवांस थे, तब भी उन्होंने फ्रेंकली स्वीकार किया कि मैं इस तरह से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। अर्जुन भगवत भक्त थे, बहुत सारे गुण थे उनके पास। तो अर्जुन ने जब उसको मना कर दिया, तो आज कलयुग के लोग जो कि 5,000 साल बाद और भी ज्यादा पतित हो चुके हैं, उनके लिए तो ये इम्पॉसिबल टास्क है। इसलिए प्रैक्टिकली जो भी अष्टांग योग सिखा रहे हैं या जो लोग अष्टांग योग को पालन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली वो उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार से कार्य करके। हो सकता है उनके शरीर के लिए लाभदायक हो और उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, परंतु योग का जो सोच के वो प्रयास करते हैं कि योग की सिद्धि प्राप्त होगी, वो योग सिद्धि उनको प्राप्त नहीं हो सकती इस प्रयास के द्वारा। इसके बाद भगवान डिस्क्राइब करना चालू करते हैं। अर्जुन इसी प्रश्न को थोड़ा और डिटेल में बताते हैं एक श्लोक में, उसके बाद भगवान उसको डिस्क्राइब करते हैं। इस अध्याय के अंत तक भगवान अर्जुन के इन आंसरों को प्रदान करते हैं। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? अभी अध्याय ऑलमोस्ट 12 श्लोक बाकी है। अर्जुन के प्रश्न के बाद जो आंसर आएगा, उसके बाद यह अध्याय खत्म हो जाता है, फिर भक्ति योग चालू होता है। ओके, किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट वीक वी विल स्टार्ट 30 श्लोक संख्या 34 या 35। यस दिव्यमान, आपने हाथ उठाया।
हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस प्रभु जी।
प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण भाव अमृत में अभी पूर्ण नहीं हुआ, वो अष्टांग योग की को विद्या कर अष्टांग योग की विद्या में महारत हासिल करना चाहता, तो वो क्या करे?
अष्टांग योग में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, उसको कृष्ण भक्ति में आगे निकलना चाहिए। अष्टांग योग में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, जिसको कृष्ण भक्ति मिला है उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है।
प्रभु जी अष्टांग योग सतयुग में होता था।
हाँ, अष्टांग योग सतयुग में होता था। आपको करने की इच्छा तो नहीं है ना? आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको भक्ति करना है।
ओके प्रभु जी।
ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है किसी? ठीक है, तो नेक्स्ट वीक हम इसके आगे से स्टार्ट करेंगे। श्रीमद भगवद गीता यथा रूप की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।